اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام قیام سے قیام تک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ جناب مختار کے حکومت کی خصوصیات، ان کو حکومت کی تشکیل میں پیش آنے والی مشکلات ہیں، کون کون سے افراد ہیں جنہوں نے اس حکومت کی تشکیل میں جناب مختار کا ساتھ دیا ہے، اس حکومت کی کیا کیا خوبصورتیاں ہیں، کیا کیا خاصیتیں ہیں اور کیا کیا خامیاں ہیں۔ ان سارے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا نجیب الحسن صاحب۔ آئیے مولانا سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولانا صاحب، کسی بھی کامیاب حکومت کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں کہ جو کسی بھی حکومت، جو حکومت کامیاب ہوتی ہے اس کا عنوان بنتی ہیں، جب لوگ اس حکومت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان خصوصیات کو، ان خوبیوں کو گنواتے ہیں کہ مثلا یہ اے حکومت، الف ہے یہ حکومت، اس کی یہ خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے اس نے دوام پایا، کامیاب رہی۔ جناب مختار کی حکومت میں ایسی کیا خصوصیات نظر آتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کسی بھی حکومت کا ثبات اور اس کی پائیداری تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ حکومت اگر حکومت عدل ہے تو اس کو دوام ہے، لیکن اگر حکومت میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، تو اندر سے حکومت کھوکھلی ہو جاتی ہے، چونکہ جو حق ہے حاکم کا اس کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ اپنی رعیت کے ساتھ انصاف کرے۔ عدالت بہت بنیادی چیز ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کی بعثت کے مقصد کو عدالت کے طور پر پیش کیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت کو رائج کیا جا سکے، عدالت کو قائم کیا جا سکے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ قیام عدل کرنا چاہتے تھے، اور جب ایسا ہوگا کہ ایک حاکم آئے گا اور وہ چاہے گا کہ ظلم اور ستم کا مقابلہ کرے اور عدالت کو رائج کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً وہ افراد جو ظلم و ستم کی بنیادوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جن کی پوری زندگی، جن کا پورا دار و مدار ظلم کے اوپر ہے۔ چونکہ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ہم ظلم کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو تماچا مار دینا ظلم ہے، کسی کو قتل کر دینا ظلم ہے، کسی کا گھر بار لوٹ لینا ظلم ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو مصادیق ظلم ہیں، ظلم کے مصداق ہیں الگ الگ۔ ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، کسی کو تماچا مارنا بھی ظلم ہے، کسی کا حق غصب کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو ستانا بھی ظلم ہے، کسی کے گھر کو آگ لگا دینا ظلم ہے، کسی کو قتل کر دینا ظلم ہے۔ لیکن ظلم کی واقعی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، جو جس شے کی جگہ نہ ہو اس کو جگہ رکھا جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عدالت یہ ہے وضع الشیء، وضع الامور علی محلہ۔ تو ایک حاکم جو حکومت کر رہا ہے، اس کی حکومت کی بنیادی خصوصیت یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اس بات کا جذبہ ہو کہ اپنی رعیت کے ساتھ انصاف کر سکے، اپنی امت کے ساتھ انصاف کر سکے۔ آپ نے جو سوال کیا، جناب مختار کی اگر آپ حکومت دیکھیں تو انہوں نے اپنی حکومت کو جو پیش کیا ہے، اس کے اپنی حکومت کو درحقیقت پیروکار بتایا ہے، پیرو حکومت علوی، یعنی جو آپ نے آنے کے بعد اپنے خطبات دیے ہیں مسجد کوفہ میں، لوگوں سے جو خطاب کیا، یہ کہا ہے کہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں علی کی حکومت کیا تھی، اور اپنے حکومت کے خطوط کو انہی خطوط سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں لے کر چلے تھے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے، حکومت کی کامیابی پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ درد مند ہوتا ہے حاکم، اس کے اندر درد ہوتا ہے، اور درد ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یعنی یہ چیز कि हम तुम्हारे पास रसूल को भेजने, रसूल आ रहा है, ये रसूल मिन अनफुसेकुम तुम में से है, अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम तुम्हारी मुश्किलात को तुमसे बेहतर समझता है, यानी तुमसे ज़्यादा इसको दर्द होता है तुम्हारी मुश्किलात में, हरीसुन अलैकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए तुमसे ज़्यादा इसके दिल में तमन्ना है, आरजू है कि तुम एक बेहतरी की तरफ गामजन हो, रऊफ़ और रहीम है। तो रहमत, दर्दमंदी और दिल के अंदर इस बात का जज्बा कि हम कुछ बेहतर कर सकें, ये एक रसूल की शान है। जो रसूल की शान है वही रसूल के वसी की शान है, और वही उन लोगों की शान होना चाहिए कि जो वसी रसूल के
मानने
साथ
वाले हैं।
एक मोहब्बत का इजहार करते हैं, मानने वाले हैं। तो जनाबे मुख्तार जो हुकूमत को तशकील दे रहे हैं, उनकी जो बुनियादी चीज़ है, जो कामयाबी जिसको कहा जाए बज़ाहिर, यानी ज़ाहरी तौर पर जिसकी बुनियाद के ऊपर खुदा के नज़दीक भी बहुत अहम है ये कि खुदा के नज़दीक वो हुकूमत काबिल कबूल है कि जहाँ पर अदालत हो। तो जाहिर है कि लोगों के दरमियान भी यही चीज़ है, लेकिन इसमें ये होता है कि कभी कभी उन लोगों की कसरत हो जाती है जो जुल्म के आदी हो गए हैं। यहाँ मुख्तार की 1.5 साल हुकूमत तकरीबन कूफे में है, इस 1.5 साल हुकूमत में ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो बिल्कुल अदालत को पसंद ही नहीं करते। अब ये उनके ऊपर है कि वो उन्होंने अपने जहनीत को कैसे बना लिया है, कौन सा लबादा ओढ़ लिया है कि जिसको इमाम अलैहिस्सलाम ने नहलुल्बलाग में फरमाया कि दीन का लिबादा इन्होंने उल्टा पहन लिया है, दीन के पहरान को उल्टा पहन लिया है। जब इंसान दीन के पहरान को उल्टा पहन ले, मसलन हम यानी लिबास पहने हुए हैं, यही लिबास जो हम पहने हुए हैं इसको उल्टा पहनने बाहर जाएंगे लोग हंसेंगे, कार्टून बन जाता है आदमी, लोग हंसते हैं। तो दीन का लिबास भी अगर उल्टा पहन लिया जाए तो मसखरा हो जाएगा, लेकिन मसखरा वहाँ बनेगा कि जहाँ पर दूसरे लोग सही पहने हुए हों।
बिल्कुल
लेकिन अगर दीन के लिबास को सब उल्टा पहन लेंगे तो एक आम सी चीज़ हो
हाँ,
जाएगी।
वो
तो
फिर
इसी तरीके से अदालत है, अगर कुछ लोग ऐसे हों जो अदालत को चाहते हों, कुछ ऐसे हों कि मसलन जो जुल्म चाहते हों, तो जाहिर है उन लोग जो वो लोग काबिल कबूल हैं उन लोग की बात सुनी जाएगी जो अदालत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग जुल्म की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो जाहिर है कि अदालत की कदरें पामाल होंगी। जनाब मुख्तार की हुकूमत की कामयाबी ये है कि आपने अपनी 1.5 साल हुकूमत में उसी अदल व इंसाफ को मुतारफ कराया जिसे इमाम अली रसूलुल्लाह लेके चले थे।
जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वो मेन या मरकजी जो नुक्ता था जिस पे मुख्तार ने फोकस किया और हुकूमत की बुनियादें रखी, वो अदल है।
वो अदल है।
इसके अलावा यानी ये तो एक बहस हो गई कि अदल बेसिक चीज़ थी जनाब
देखिए
मुख्तार की हुकूमत में।
जनाब
इसके
मुख
अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जनाब मुख्तार ने फोकस किया है अपनी हुकूमत में?
देखिए जितनी भी चीज़ें हैं इसी के फिर ज़ैल में आती हैं, ये महवरी और बुनियादी नुक्ता है अदालत। अब इसी से मिलता है मसलन मुसावात, दूसरों के हुकूक की रियायत, या दर्दमंदी के जिस तरह इमाम अली रहमतुल्लाह देखें उनकी सीरत में है कि दोपहर कड़ी चिलचिलाती धूप बाहर आके यानी गली में टहल रहे हैं, कूफे की गलियों में हैं, कोई कहता है कि भाई ये कौन सा वक्त है मौला, इस टाइम धूप है, चिलचिलाती हुई धूप है, लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, आप धूप में हैं कम से कम साए में। तो इमाम कहते हैं कि इन्नी उकरह, इस तरह से कुछ जुमले हैं कि युकालो अमीरुल मोमिनीन, मुझे अमीर मोमिनीन कहा जाए और मैं लोगों के उमूर में उनकी ज़िंदगी में कोई मदद ना कर सकूं, मुझे इससे कराहियत है कि मुझे लोग अमीरुल मोमिनीन कहें और मैं इसलिए यहाँ पर हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई धूप में कोई किसी को कोई ज़रूरत हो वो आए और उसके बाद ये सोच के वापस चला जाए कि अमीरुल मोमिनीन आराम फरमा रहे हैं, मसलन इस वक्त ये टाइम नहीं है इसलिए मैं खुद निकला हुआ हूँ। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुकूमत की शान ये है, उसकी खसूसियत यह है कि अली खुद आते हैं। अब आज हमारे यहाँ आप देखें जो सूरत हाल है, एक मरतबा कुछ लोग ज़रूरतमंद हैं, वो ज़रूरतमंद कतार लगा के लाइन में खड़े हुए हैं ऐसे लोगों के पास जो साहिब हैसियत हैं, एक ये तर्ज है। एक ये है कि नहीं ज़रूरतमंद अपने घर में है लेकिन जो साहिब हैसियत है जो ज़रूरत को पूरा कर सकता है वो ढूंढ रहा है उस शख्स को कि जो ज़रूरतमंद है, ये है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुकूमत की तस्वीर। इसी से जनाब मुख्तार ने इस्तेफादा किया और उन्होंने इस बात की कोशिश की। मसलन आप देखें कि जनाब हजर बिन उदय के घर को तोड़ दिया गया था, जो कातिली ने करबला हैं उनमें से बास के घरों को तोड़ के उनके जो घर का जो साजो सामान है उससे हजर के घर को मसलन तामीर कराया। इस तरह से इंतकाम भी अगर लिया तो इंतकाम ये नहीं कि उसके घर को तोड़ दिया, ये है, यानी दर्दमंदी यहाँ तक है कि दूसरे की ज़रूरत का ख्याल यहाँ तक है कि ये अली का साथ देने वाला है, हजर है, इसको सताया गया है। तो अब ऐसा है कि अगर किसी कातिली ने इमाम हुसैन के घर को अगर तखरीब किया गया, ख़राब किया गया, उसको उसके आमाल की सज़ा दी गई, कैफे किरदार तक पहुँचाया, तो अब उसके घर से मिलने वाली चीज़ें वो कहाँ जाएँ? उसको बैतुलमाल में नहीं रखा जनाब मुख्तार, ऐसा नहीं किया कि अपने पास रख लेते, या कर सकते थे, लेकिन जाके उसको लगाया उस घर में कि जो तखरीब किया गया था अली की मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर। लिहाजा इन्होंने जो दुश्मनान अली थे उनसे मिलने वाले माल को वहाँ सर्व किया कि जो अली की मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर जिस घर को तखरीब किया गया था इन्होंने अली की मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर उसे
मज़ीद
बनाया।
खसूसियात पे बात करेंगे यहाँ पे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना नजीबुल हसन साहब, इनसे हम अपने मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मौलाना, खसूसियात आपने बताई कि अदल व इंसाफ को अपनी हुकूमत का मरकज़ी नुक्ता करार दिया कि अगर हुकूमत कायम होगी तो अदल व इंसाफ, और क्या क्या हमें खसूसियात नज़र आती हैं?
देखें, तमाम तर वही खसूसियात के जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत की थी कि अली यतीम को तड़पता नहीं देख सकते, अली किसी मज़लूम की सिसकियां नहीं सुन सकते, अली किसी सताए हुए इंसान के नालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अली बेवाओं के यास व हसरत से मुरझाए हुए चेहरों को नहीं देख सकते, अली का दिल तड़प उठता है इसलिए कि अली दर्दमंद है।
वो तो बड़ा मुश्किल दौर था।
तो
मौला अली अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत है वो दूसरी खिलाफतों की बनिस्बत एक तो कम अरसा है उसका, और फिर जिस तरह वो किसी मौर्रख ने लिखा है, इमाम अली अलैहिस्सलाम को उनके अदल की वजह से शहीद किया गया।
कुतला फी मेराबे लिशिद्दत अदले,
हाँ, शिद्दत अदल की वजह से उनको शहीद किया गया। तो क्या इन सारी चीज़ों को, इस तरीके को अपना के मुख्तार अपनी हुकूमत में कामयाब रहें?
नहीं देखें, मुख्तार का जो एक जाहिर है कि ये गुलाम हैं, अब इसमें कामयाबी का मेयार ये देखा जाएगा कि हमारे नज़दीक कामयाबी का मेयार क्या है, उस मियार को लेंगे फिर देखेंगे कामयाबी, कामयाबी का मियार ज़्यादा हुकूमत कर देना है या कर ज़्यादा हुकूमत चला लेना है, मशीनरी पर काबिज़ हो जाना है, या कामयाबी का मियार है कि जितने दिन तक है इंसान जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये है। तो अगर कामयाबी का पहले हम मियार मुय्यन करेंगे कि क्या है। दूसरा मसला ये है कि जनाब मुख्तार की हुकूमत के अंदर जो जनाब मुख्तार ख़ुद बयान कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ हुकूमत अलवी को तुम्हें दिखाऊं कि हुकूमत अलवी क्या होती है, क्योंकि उसी मकतब के परवरदा हैं जो मकतबे अलवी है, मकतबे मुहम्मदी है। ये बताना चाहते हैं कि मेरा आका अगर हुकूमत करता तो वो किस तरह से हुकूमत करता। अगरचे जनाब मुख्तार और इमाम अली अलैहिस्सलाम में बहुत फ़र्क है, यानी कोई किसी भी तरह से कोई मुआज़ना नहीं किया जा सकता, तकाबुल नहीं किया जा सकता दोनों का किसी भी एतबार से, किसी भी तरह से ये ग़ुलाम है, और फिर ज़ाहिर है कि इमाम मासूम है, ये गैर मासूम है। लेकिन उसके बावजूद जिस चीज़ को ख़ुद जनाब मुख्तार बयान कर रहे हैं कि एक हुकूमत के अंदर मसलन दर्दमंदी होनी चाहिए वो है, एक हुकूमत के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए वो है, ये चीज़ें बुनियादी हैं। अच्छा, एक चीज़ जिसको मसलन हो सकता है कुछ लोग कहें कि हुकूमत की खसूसियत, वो खसूसियत में ज़ाहिरन हमारे हिसाब से नहीं है कि वो उसकी खसूसियत हो, वो मकसद है जनाब मुख्तार का हुकूमत के लिए, वो ये है कि मसलन कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उनको इंतकाम लेना है, बदला लेना है, ये जो किसास है ये जनाब मुख्तार का मकसद है, और इसी मकसद के लिए जनाब मुख्तार ने हुकूमत को लिया है, वो वसीला है, वो जरिया है, लिहाजा इसीलिए ये कहा जाता है कि जनाब मुख्तार का बुनियादी मकसद हुकूमत करना नहीं था, बुनियादी मकसद जनाब मुख्तार का कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किसास करना था, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना था। इस मकसद के लिए ये ज़रूरी था कि एक ऐसा इक्तदार हो, एक ऐसा मकाम हो, एक ऐसी मंजिल हो जहाँ पर इंसान कुदरत के साथ फ़ैसला सुना सके। जो आम सूरत में अगर कोई हुकूमत तश्कील ना पाती, इस तरह से ना होता, तो नामुख्तार के लिए थोड़ा तो मुश्किल था कि क्याम कर सकते।
तो
जी
इसमें इनको कितनी मुश्किलात पेश आई जनाबी मुख्तार को?
हाँ, अब ये इस सिलसिले में कि अपनी यानी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब रहे या नहीं
जी
रहे, कहेंगे दो चीज़ें हैं। कुछ लोग इस अंदाज़ से देखते हैं कि जनाब मुख्तार खुद 1.5 साल हुकूमत, बस 1.5 साल की हुकूमत तमाम हो गई, कामयाबी का वही मेयार पहले हमें मुयन करना पड़ेगा हर चीज़ का, कि हम जब तक एक मेयार पे नहीं आएंगे, कि मेयार के हम नहीं समझेंगे कि कामयाबी मिली कि नहीं मिली। जनाब मुख्तार का मकसद हुकूमत करना होता तो ये कहा जा सकता था। बाज़ जगहों पर ये मिलता है कि जनाब मुख्तार मसलन बाद में हुकूमत और आगे करना चाहते थे और ये चाहते थे कि बनी उमैया का किला कमा करें, ये बाज़ जगहों पर है। लेकिन जो जनाब मुख्तार ने इब्तदा से अपने नुक्ते नज़र के उनवान से पेश किया, अपने मकसद के उनवान से पेश किया, वो ये कि हम कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से इंतकाम लेना ये मकसद है। अब ये देखें कि इसमें कामयाब हुए कि नहीं। जो बड़े बड़े करबला में वो अफराद हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर ख़ानदान इस्मत व तहारत को इतना बड़ा ज़ख्म लगा, मसलन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, शिम्र, पिसरे साद, खूली, हुरमुला, ये तमाम वो अफराद हैं कि जो टारगेट थे जनाब मुख्तार का, निशाने पर थे जनाब मुख्तार के, और जनाब मुख्तार ने इनको ख़त्म किया, यानी मुकम्मल तौर पर अपने मकसद को जनाब मुख्तार ने पूरा किया। अगर इस मकसद को अगर देखा जाए कि कसास करना था। अब यह है कि कुछ तारीख में इस तरह की बातें मिलती हैं कि मसलन जनाब मुख्तार का मकसद कुछ और था, ये उसके सिलसिले में गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल शायद हमारे इससे यानी मौजू से बहुत ज़्यादा टच उसका नहीं हो। बहुत सारे अफराद ये कहते हैं कि जनाब मुख्तार का मकसद ख़ुद हुकूमत था, वो एक अलग मसला है, और हुकूमत अगर उन्होंने की तो किस तरह से इमाम सज्जाद को अपने साथ रखा नहीं रखा, वो एक दूसरी बहस है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है कि जिसको तमाम लोगों ने माना है कि कम अज़ कम इतना था कि जनाब मुख्तार बयान कर रहे थे कि हम कातिली ने इमाम हुसैन से इंतकाम लेना चाहते हैं, और उन्होंने उस काम को कर
कर
दिखाया,
दिखाया।
लिहाजा अपने मकसद में कामयाब है।
अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो हुकूमत अलवी कायम करना चाह रहे हैं, दूसरा कातिली ने इमाम हुसैन, जिनमें से अक्सर अफराद किसी कबीले के सरदार हैं, बुज़ुर्ग हैं, अशराफ में से हैं, ऐसे अफराद से इंतकाम लेना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का। यहाँ पर इनको जो ख़ास अफराद हैं, बुज़ुर्गान ख़वास जो हैं, इनका क्या किरदार नज़र आता है? उन्होंने किस तरह इन दो मुश्किल, यानी दो मुश्किल टास्क हैं, एक तो अलवी हुकूमत का क़याम, एक तरफ खून इमाम हुसैन का इंतकाम अशराफ से, बुजुर्गान से, हुकूमत वक्त से, खवास ने यहाँ पे क्या किरदार अदा किया है कि जनाब मुख्तार अपने मकसद में इतना कामयाब नज़र आते हैं?
जी देखें, अगर जनाब मुख्तार की कामयाबी को आप देखें कि जहाँ तक कामयाबी इस रुख से अगर आप देख रहे हैं कि जनाब मुख्तार कातिली ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क़िसास करने में, इंतकाम लेने में कामयाब हो गए, इस हद तक ठीक है। लेकिन अगर इससे आप बढ़ते हैं तो खवास का जो किरदार होना चाहिए वो किरदार नहीं रहा है, बल्कि उसका बरअक्स है। होना तो ये चाहिए था कि जब एक शख्स यहाँ तक आगे बढ़ा है, पहला मकसद उसका ये है। ज़रूरी नहीं है कि जब कोई तहरीक का आगाज़ हो रहा हो, जब किसी तहरीक का आगाज़ हो रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले ही मरहले में आखिर तक की बात सोच के बैठा हो इंसान। पहले मरहले में कादरी इमाम हुसैन का किसास बुनियादी चीज़, बुनियादी मकसद था। दूसरे मरहले में ये था कि अब ये हुकूमत आ गई है, अब क्या करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे जनाब मुख्तार के सिलसिले में मिलता है कि हुकूमत आई तो उन्होंने क्यों नहीं दी, ये सवाल उठता है, हुकूमत आई तो इमाम सज्जाद नहीं। जनाब मुख्तार ने मुकातबा किया है, बाकायदा खतूत लिखे हैं, जनाब मोहम्मद हनफिया की खिदमत में ख़त लिखा है, कि अब ये भी एक मसला है कि जनाब मोहम्मद हनफिया की खिदमत में क्यों ख़त लिखा, इमाम सज्जाद के लिए क्यों नहीं लिखा। हमने उसको अर्ज़ किया था कि उलमा की मुख्तलिफ इसमें नज़र है, अल्लामा मोहम्मद तकी मुदर्रसी और कुछ इस तरह के उलमा, ख़ास तौर पर बाकर शरीफ क़रशी, अब्दुलरज्जाक मुकर्रम, ये इस तरह के कुछ अफराद हैं जो इस बात को बयान करते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की सियासी हिकमत अमली ये बनाई कि सामने खुद ना आए और मोहम्मद
मोहम्मद
हनफिया
इब्न
के
हनफिया का
हवाले
लखा।
मामला को किया, और इस तरह की रिवायात भी हैं। और आयतुल्लाह खुई ने भी इस चीज़ को बयान किया है कि जनाब मुख्तार का क़याम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इजाज़त से था। तो ये अगर शुबा आता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि क्यों हुकूमत मसलन उन्होंने हवाले नहीं की। अब आएँ, हमारे पास टाइम कितना है, पहले बताएं, ताकि वो खवास का मसला हम उसको
बस बहुत कम वक्त रह गया, शायद 1 मिनट या उससे कुछ कम।
1 मिनट में तो हम इसको नहीं कंप्लीट कर सकेंगे, लेकिन इजमाली तौर पर ये कहा जा सकता है कि खवास का हमेशा एक किरदार अहम है। जो किरदार खवास को अदा करना चाहिए, जिस तरह से अगर एक हुकूमत आ गई थी, तो अब ये नहीं था कि जैसे कुछ लोगों के अंदर ये बात खवासी अशराफ में थी, ये बात कि तुमने क्यों ये सब किया, यानी इतनी फौज लश्कर कशी ये सब क्यों की, क्योंकि तुम कसास लेना चाहते थे, यही इंतकाम लेना, ले लिया अब ख़त्म, अब क्या है। तो ये खवास की एक बुनियादी गलती थी जो इस तरह से सोच रहे थे कि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें कसास लेना था। और बड़े बड़े इस तरह के अफराद हैं, सईद बिन अब्दुलरहमान कैस, ये इस तरह के अफराद आते हैं जो सरदारों में से हैं, और आने के बाद कहते हैं कि ये अब तो तुमने अपना काम कर लिया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शिया कि जिनके जहन में ये था कि हुकूमत एक बुरी चीज़ है, अब वो कह रहे हैं कि तुमसे ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर ये हुकूमत जो जनाब मुख्तार के पास है, कम से कम शिया है, कम से कम अली से मोहब्बत का इजहार तो कर रहा है, अगर इसके पास हुकूमत है तो कुछ दिन रहे तो और बेहतर है, नहीं, ये नहीं सोचते। ये कहते हैं अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। अच्छा, ख़त्म हो गया तो फिर क्या किया जाए, ख़त्म हो गया तो फिर वो आले ज़ुबैर रहे, फिर आले मरवान रहे, ये है मतन नज़र। उसके बाद की आप उसकी बात की प्लानिंग क्या कर रहे हैं, उसके बाद के लिए क्या सोच रहे हैं, कोई
सही।
सोच नहीं है। तो ये खवास का एक ऐसा मनफी किरदार है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तार की हुकूमत जो कुछ दिन के लिए आई थी उसको और आगे बढ़ाया जा सकता था, और उसके बाद ये हो सकता था कि जाते मुकातबा करते हैं, इमाम सज्जाद की खिदमत में हाजिर होते हैं, मोहम्मद हनफिया की खिदमत में हाजिर होते हैं, पूछते हैं कि अब ये हुकूमत आ गई, अब क्या करें मसन, ये एक तर्ज अमल था, या ये कि जनाब मुख्तार के जो मुकाबले पर आ जाएं कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब इंतकाम ले चुके।
बिल्कुल, तुम इंतकाम ले चुके। बहुत शुक्रिया मौलाना, वक्त दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे स्क्रीन पे मौजूद SMS और ईमेल एड्रेसेस हैं, अपने सवालात हमें लिख के भेजें ताकि हम उनके जवाब अपने उलमा और दानिश्वर हजरात से ले सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।